नमस्कार भारत, 28 सितंबर दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने उठाया कश्मीर मुद्दा, दुनिया को किया आगाह।
दिस हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, व्हेन द कर्फ्यू इज लिफ्टेड विल बी अ ब्लडबाथ।
इमरान के आरोप पर कुछ देर में जवाब देगा भारत। अफगानिस्तान में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए आज मतदान।
یک انتخابات بسیار شفاف عادلانه دیگه تقلب نکنه کسی بسیار کار
اور ویویشنا میں ریحان فضل کے ساتھ 1971 کی جنگ کے آپریشن جیک پاٹ کی بات
یہ جو قصہ ہے بالکل ایک جیمز بانڈ تھرلر کی طرح ہے پاکستانی اتھارٹیز کو پتہ لگتا ہے کہ یہ فرار ہو گئے ہمارے سیلرز
لیکن پہلے وشو سماچار
بی بی سی سماچار بھومیکا رائے سے भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने 17 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इसलिए ये जरूरी है कि पूरी दुनिया इस मुद्दे पर एकजुट हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संबोधन के लिए आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने संबोधन में कहा कि जब भारत प्रशासित कश्मीर में पाबंदी हटेगी तो वहां कत्ले आम होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपना अपना संबोधन दिया, वहीं कुछ लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये लोग कश्मीर पर भारत की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कर रही एक महिला रोजीना खान का कहना था,
Kashmir is a prison, world's largest prison right now. Since 2 months, it's almost 55
Kashmir jail ban chuka hai, duniya ki sabse badi jail. Pichle 2 mahine se, lagbhag 55 din se wahan curfew hai. Log pareshan hai, mujhe ye samajh nahi aa raha ki wo log kaise kha rahe honge. Mujhe lagta hai ki mera dil, mera dimag wahan Srinagar mein mere parivar ke paas hai. मुझे अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैं उनके बारे में सोचती हूं, तो रोने लगती हूं। रोजीना के शब्द। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में करीब 1.5 लाख छात्र छात्राओं ने जलवायु के मुद्दे को लेकर एक बड़ी रैली निकाली। इससे पूर्व पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की और उनसे कहा कि वे और दुनिया के दूसरे नेता ग्रीन हाउस प्रभाव को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। ट्रूडो ने शहरों को बेहतर बनाने और आग से बर्बाद हो चुके जंगलों को दोबारा बसाने के लिए करीब 2 अरब पेड़ों को लगाने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करने का वादा किया है। इसके बाद प्रदर्शनकर्ताओं को संबोधित करते हुए थनबर्ग ने कहा,
We are not in school today. You are not at work today.
आज हम अपने स्कूलों में नहीं हैं। आप में से कुछ लोग दफ्तर नहीं गए क्योंकि ये आपातकाल है और हम सिर्फ पीछे खड़े होकर सब कुछ देखते हुए नहीं रह सकते। कुछ लोग हमसे कहेंगे कि जिस समय हमें अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में वक्त लगाना चाहिए, हम यहाँ हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारा उनसे कहना है कि हम दुनिया बदल रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के निचले सदन ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को आदेश दिया है कि वे ट्रंप प्रशासन के यूक्रेन की सरकार के साथ व्यवहार और संपर्क से जुड़े सारे दस्तावेज जमा करें। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को इन दस्तावेजों को जमा कराने के लिए आगामी शुक्रवार तक का समय दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव डाला कि वो उनके प्रतिद्वंद्वी और डेमोक्रेट पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन को और उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार के दावों की जांच करवाएं, जिसमें उन पर अमेरिकी संविधान के तहत विरोध करने का आरोप लगाया गया है। रूस में अब कोई भी अपने अपार्टमेंट की बालकनी में धूम्रपान नहीं कर सकेगा। रूस की सरकार ने इसकी पुष्टि की है। आपात स्थिति मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों के तहत अब खुले में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं होगी। इसमें खुले स्थान पर मोमबत्ती जलाना, तंदूर का इस्तेमाल करना और साथ ही माचिस के इस्तेमाल पर भी रोक है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल रूस में 2000 से ज़्यादा बालकनियों में आग की घटनाएं सामने आईं, जिसे देखते हुए ये नियम तय किए गए हैं। अमेरिका ने ईरान के विदेश मंत्री के संदर्भ में अपने यात्रा प्रतिबंधों में ढिलाई देने की बात तो कही है, लेकिन सशर्त। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार। भारत में सबसे पहले बात संयुक्त राष्ट्र महासभा की। महासभा को कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संबोधित किया। ये दोनों नेता संयुक्त राष्ट्र में क्या कहते हैं, इसका इंतजार लंबे वक्त से था। मोदी 17 मिनट बोले। उन्होंने अपने भाषण में न पाकिस्तान का नाम लिया और न ही कश्मीर का जिक्र किया। अपनी सरकार के कामकाज गिनाए, विश्व शांति में भारत की भूमिका की बात की और आतंकवाद के खतरे से दुनिया को आगाह किया। इमरान खान का भाषण करीब 50 मिनट लंबा था। इस भाषण में उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और भारत पर कई आरोप लगाए। दोनों नेताओं के भाषणों पर विश्लेषकों ने भी नजर बनाए हुई थी। वो क्या कहते हैं, सुनिए बीबीसी संवाददाता कमलेश मठेनी की रिपोर्ट।
हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है, और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी।
ये थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से की। उनके दिए संदेश सत्य, अहिंसा और शांति का जिक्र करने से लेकर वो आतंकवाद के खतरे तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरे विश्व के लिए चुनौती है और उसे लड़ने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वास्थ्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बात की। नरेंद्र मोदी के भाषण पर डेलवेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि उन्होंने कई वैश्विक मुद्दों का जिक्र तो किया, लेकिन कई और महत्वपूर्ण मसलों पर बोलने का मौका गंवा दिया।
उन्होंने तीन चार बातें की। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन उन्होंने मतलब उनकी तकरीर में की जो खास बात थी कि इन्होंने कहा किस बातों को टच नहीं किया, तो एक बात तो ये है कि जो इंडिया के खिलाफ जो काफ़ी तनकीद की जा रही है कश्मीर के मसले को लेकर, कि वहाँ कई हफ्तों से एक किस्म से ओप्रेसिव ऑक्यूपेशन की सूरत हाल बनी हुई है, तो उसके बारे में उन्होंने दुनिया को कोई तसली नहीं दी। और एक दिलचस्प बात थी कि मैं पिछले चंद महीनों से और इनफैक्ट पिछले चंद सालों से बीजेपी ने इंडिया की जो डायस्पोरा है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, उनके लिए भी कोई मैसेज नहीं थी नरेंद्र मोदी के पास में।
जहां नरेंद्र मोदी का भाषण लगभग 17 मिनट चला, वहीं इमरान खान ने लगभग 50 मिनट तक महासभा को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर भारत प्रशासित कश्मीर में लगी पाबंदियों के गंभीर परिणाम होने की चेतावनी दी।
मिस्टर प्रेसिडेंट, 100,000 कश्मीरीज हैव डाइड इन द पास्ट 30 इयर्स। The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. But this has serious consequences. When the curfew is lifted, will be a bloodbath.
इमरान खान के भाषण पर प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि आतंकवाद के मसले पर वो काफी बचाव करते नजर आए।
इतना डिफेंसिव थे इस्लामिक टेररिज्म को लेकर कि अपने मुल्क को वो 9/11 के बारे में डिफेंड कर रहे थे। जो लोग 9/11 को भूल गए थे उनको भी याद दिला दिया कि 9/11 में पाकिस्तान का क्या रोल था। तो ये जो डिफेंसिव पॉस्चर है ये साफ जाहिर करता है कि अभी भी पाकिस्तान का जो ताल्लुक है टेररिज्म के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो उस इमेज के साथ वो बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, और वो स्पीच में थोड़ा वो रैमल भी कर रहे थे, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इमेज बदले। तो बेसिकली उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म, करप्शन वगैरह सब का हुस्नूर अमरीका की तरफ इशारा किया है। और फिर मुझे ताज्जुब हो रहा था कि इतनी उनको मदद की जरूरत है अमेरिका की और अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन की, लेकिन उसके बावजूद वो हर बीमारी का वजह अमरीका को बता रहे थे।
संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान जब कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर बोले तो पाकिस्तान में उस पर क्या प्रतिक्रिया थी, इसे लेकर हमने बात की पाकिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार हारून राशिद से।
देखें, उन्होंने तो तीन चार मुद्दों पे बात की, लेकिन पाकिस्तान में जो हाइप क्रिएट हुआ है जब से वो अमेरिका गए हुए हैं इस दौरे पर, वो यही था कि वो कश्मीर के बारे में क्या मौकफ इख्तियार करते हैं और कैसी वहां पर जाकर यूएन पर बात करते हैं। तो बड़ी जज्बाती तकरीर थी उनकी, टाइम भी उन्होंने ज्यादा लिया। देखना यही है कि उसका रद्दअमल क्या होता है, कोई फर्क पड़ता है इंटरनेशनल कम्युनिटी पर या जो यूएन है कोई उस पर कदम उठाता है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी काफी वाह वाह हो रही है। और यहाँ पर लोग काफी तारीफ कर रहे हैं।
भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक स्तर पर अपना पक्ष रखा है, लेकिन इसका क्या प्रभाव होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कमलेश मठेनी, BBC दिल्ली।
न्यूयॉर्क में कल कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए प्रदर्शनकारी भी जुटे, उनमें से कुछ की आवाज आपको सुनाते हैं।
We feel the pain of our Muslim brothers. That's why we are here to protest against the Modi government and their brutal activity.
I took my day off from work to just to be here so that world would know that what's happening in Kashmir.
प्रदर्शन में हिस्सा लेने आई आयमा कह रही थी कि हमें अपने मुस्लिम भाइयों को लेकर दर्द है, इसलिए हम मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। वहीं कंवर अहमद कह रहे थे कि दुनिया को ये पता लगे कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इसलिए मैं अपने काम से छुट्टी लेकर आया हूं। न्यूयॉर्क में एक वर्ग ने विरोध पाकिस्तान का भी किया। उधर भारत और पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी और इमरान खान के भाषणों पर लोगों की नज़र थी। भाषण खत्म होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आने लगी। हमारी साथी भूमिका राय ने सोशल मीडिया पर नज़र बनाए रखी थी। जी भूमिका, क्या कुछ लोगों ने लिखा है?
जी वात्सल्य, भारत में मोदी के बयान की जमकर तारीफ हो रही है और पाकिस्तान में जाहिर तौर पर है इमरान खान के भाषण की तारीफ की जा रही है। लोग दोनों नेताओं के भाषणों की तुलना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान को जहां भारत में प्रेरणा देने वाला बताया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में इमरान खान के भाषण को अभी तक का सबसे बेहतरीन भाषण माना जा रहा है। और लोगों का कहना है कि इमरान खान को मोदी से, भारत में लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को मोदी से सीखना चाहिए कि भाषण कैसे दिया जाता है, क्योंकि मोदी ने अपने पूरे भाषण में कहीं भी किसी देश का नाम नहीं लिया लेकिन सारी बात कही, जबकि इमरान खान काफी आक्रामक थे। और प्रधानमंत्री के संबोधन पर आम लोगों से लेकर खास लोगों तक ने टिप्पणी की है। अगर खास लोगों के नाम लूं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, इसके अलावा बहुत से नेता हैं जिन्होंने मोदी को बधाई दी है। और पाकिस्तान से बस एक चीज़ का जिक्र करूं कि लोगों का पाकिस्तान में ये कहना है कि अभी तक का, उन लोगों ने पुराने प्रधानमंत्रियों से तुलना की और ये कहा है कि अभी तक जो इमरान खान ने जो बयान दिया है वो वहाँ का बेस्ट अभी तक का बयान रहा है,
यानी पिछले प्रधानमंत्रियों की तुलना में। शुक्रिया भूमिका। हम बता दें कि भारतीय पक्ष इमरान खान के आरोपों पर कुछ देर में जवाब दे सकता है। और अगली खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में आज नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव मैदान में कुल 16 उम्मीदवार हैं। तालिबान ने मतदान केंद्रों को निशाना बनाने की धमकी दी है। कई इलाकों में इसे लेकर लोग डरे हुए हैं। रिपोर्ट सुनिए भूमिका राय से।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव मैदान में कुल 16 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी और 2014 में CEO बनाए गए अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच माना जा रहा है। अमेरिका ने साल 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से हटाया था। उसके बाद से यहां चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। तालिबान ने चेतावनी दी है कि चुनाव में बाधा डालने के लिए वो मतदान केंद्रों को निशाना बनाएंगे। ऐसे में आशंका है कि कई इलाकों में खतरे की वजह से मतदान संभव ही नहीं होगा। चुनाव अधिकारी भी कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। पंजशीर में चुनाव व्यवस्था में लगे जमीर नाम के एक अधिकारी ने बताया, हमारे एक मतदान केंद्र तक कोई सड़क नहीं है, इसलिए हम गधों के जरिए ढुलाई कर रहे हैं। हम व्यवस्था में लगे हैं ताकि लोग वोट डाल सकें। ये थे चुनाव अधिकारी जमीर। अफगानिस्तान बीते करीब 4 दशक से जंग जैसे हालात से जूझ रहा है। नए राष्ट्रपति के सामने एक ऐसे देश की अगुवाई की चुनौती होगी जिसे दशकों की हिंसा ने तबाह कर दिया है। अब अमेरिका संघर्ष खत्म करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश में है। तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को अवैध बताते हुए उनके साथ सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। तालिबान ने यह भी कहा है कि अमेरिका से समझौता होने के बाद ही वो अफगानिस्तान के प्रशासन से बातचीत शुरू करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि अफगानिस्तान में नया राष्ट्रपति कौन होगा ये अमेरिका के लिए प्राथमिक चिंता का मामला नहीं है, बल्कि इसे लेकर वो लोग चिंतित हैं जो सेना, तालिबान और दूसरे विद्रोहियों के बीच टकराव में घिरे हुए हैं। BBC के एक रिसर्च के मुताबिक अफगानिस्तान में अगस्त महीने के दौरान संघर्ष में हर दिन औसतन 74 महिला, पुरुष और बच्चों की मौत हुई। मारे गए लोगों में 1/5 आम लोगों का था। नया राष्ट्रपति चुनते समय लोगों के एजेंडे में सबसे ऊपर एक ऐसे नेता को चुनना होगा जो शांति ला सके। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफगानिस्तान में बेरोजगारी की दर 25% है। देश की कुल आबादी के करीब 55% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय, और अब भूमिका से ही जान लेते हैं कि आज दिल्ली से छपे अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है। जी भूमिका,
वात्सल्य, जो जिस तरीके से कल भाषण रहा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इमरान खान का, वही भाषण जो है वो हर अखबार के पहले पन्ने पर है। जैसे मैं दैनिक भास्कर मेरे पास है, उसने हेडिंग लगाई है विश्व संसद में बुद्ध मुस्कुराए। तो इसी तरीके से हर अखबार ने अपने अपने तरीके से, किसी ने भाषण को लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हेडिंग ली है, तो किसी ने इमरान
मोदी ने कल युद्ध और बुद्ध को जोड़ा था।
बिल्कुल, और कई अखबारों ने लिखा है कि इमरान खान जो हैं वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने काफी आक्रामक बयान दिया है। इसके अलावा दूसरी अगर खबरों की बात करें तो पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह पर आरोप तय, जमानत मिली, लेकिन ये अयोध्या मुद्दे पर उन्हें जो है उन पे आरोप तय किए गए लेकिन उन्हें जमानत मिल गई है। इसके अलावा भूटान में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और भारतीय और भूटानी पायलट जो है उसमें दो लोगों की मौत हो गई है। आज लता मंगेशकर का जन्मदिन भी है, तो लगभग हर अखबार ने उन्हें अपने अपने तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है, और हमारी तरफ से भी लता मंगेशकर को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई।
जी भूमिका, बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। आज हमारे पास वक्त अखबारों के लिए इतना ही है।
बीबीसी इंडिया पोल।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के मुद्दे को उठाती रही है, पर क्या नरेंद्र मोदी सरकार न्याय दिला पाई है कश्मीरी पंडितों को? इस बार इसी मुद्दे पर होगी चर्चा इंडिया बोल में। कार्यक्रम में आप भी रखिए अपनी राय, और हिस्सा लेने के लिए शनिवार 28 सितंबर को शाम 8 बजे से 8:30 बजे के बीच मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त विवेचना का। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुई जंग के कुछ पक्षों को अब तक उजागर नहीं किया गया है। बीते दिनों कैप्टन एमएनआर सावंत और संदीप उन्नीथन की किताब प्रकाशित हुई है। इसमें नौसेना और मुक्तिवाहिनी के गुप्त अभियान पर रोशनी डाली गई है। 1971 के ऑपरेशन जैकपॉट पर सुनिए रेहान फजल की विवेचना।
एक अगस्त 1971 को 20,000 दर्शकों से खचाखच भरे न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने ये गाना गाया, तो पूरी दुनिया का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार और वहां से भारत आ रहे शरणार्थियों की तरफ गया। लेकिन मार्च 1971 से ही अपने ही लोगों पर पाकिस्तानी क्रैकडाउन की खबर बाहरी दुनिया को मिलनी शुरू हो गई थी। उसी समय फ्रांस के नौसैनिक ठिकाने तूलों में अभ्यास कर रही पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस मांगरो के 8 बंगाली नाविकों ने पनडुब्बी छोड़ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए चल रही लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। ऑपरेशन एक्स, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज कोवर्ट नेवल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान 1971 के लेखक और इंडिया टुडे पत्रिका के एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उन्नीथन बताते हैं।
एक बहुत ही अहम किरदार है इसमें, उनका नाम है अब्दुल वाहिद चौधरी। वो बहुत ही एक यंग सेलर थे लेकिन बहुत मोटिवेटेड थे। उन्होंने अपने साथियों को उकसाया और कहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान फौज में हम क्यों हैं, हम चलते हैं फ्रीडम फाइटर बनने के लिए। ये जो 8 लोग हैं वो भाग निकलते हैं वहाँ से। ये जो किस्सा है बिल्कुल एक जेम्स बॉन्ड थ्रिलर की तरह है। ये 8 सेलर जो हैं पहले स्विट्जरलैंड जाते हैं लेकिन उनके पास वीज़ा नहीं है, इसलिए उनको वापस भेज दिया जाता है। और फिर उनको डर लगता है कि अगर वो फ्रांस में ठहरेंगे तो उनको पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कोर्ट मार्शल किया जा सकता है और उनको मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। तो इसी डर से वो फिर स्पेन चले जाते हैं, और स्पेन में इंडियन कौंसल जनरल में चले जाते हैं, जहाँ उनको मिलते हैं श्री गुरदीप बेदी, एक यंग डिप्लोमेट है, जो उनको एक होटल में पुट अप करते हैं और फिर वो चेक करते हैं दिल्ली से कि इनके साथ क्या किया जाए। तो दिल्ली से उनको मैसेज आता है कि भाई इनको फौरन रवाना किया जाए वापस इंडिया में, उनके जो भी है पासपोर्ट आप नकली पासपोर्ट बना के उनको भेज दें अब हमारे पास। तो गुरदीप बेदी जी जो हैं बैठ के अपने स्टाफ के साथ सारे फेक पेपर्स बनाते हैं और उनको सारे इंडियन नाम दे के उनको एयर इंडिया के जहाज पे बिठा के वापस इंडिया भेजते हैं, और तब तक जो है पाकिस्तानी अथॉरिटीज को पता लगता है कि ये फरार हो गए हमारे सेलर्स। और एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है इसमें, जहाँ पर वो आते हैं एयरपोर्ट में उनको पकड़ने के लिए और चौधरी साहब और सब भिड़ जाते हैं उनके साथ और वो कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम तो इंडिया जाएंगे।
इन आठों बंगाली सबमरीनर्स को दिल्ली लाया गया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सेफ हाउस में रखा गया। उस समय भारतीय नौसेना के डायरेक्टर नेवल इंटेलिजेंस कैप्टन एम के मिकी रॉय के जहन में ख्याल आया कि फ्रांस से भारत भाग कर आए इन बंगाली नाविकों का इस्तेमाल पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी पोतों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए। इस तरह ऑपरेशन जैकपॉट की शुरुआत हुई और कमांडर एमएनआर सावंत को इसकी जिम्मेदारी दी गई। भारत और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट जहां पलासी की लड़ाई हुई थी, मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए एक कैंप लगाया गया और इसको कोड नेम दिया गया कैंप टू पलासी, यानी C2P। इस कैंप को चलाने वाले कमांडर विजय कपिल याद करते हैं।
वहाँ बिजली पानी कुछ नहीं था, लालटेन चलती थी, पानी हैंडपंप से चलता था, खाना लंगर में बनता था, पंखा वंखा कोई नहीं था, मच्छर बहुत थे। मुश्किलें तो थी, लेकिन अब ये मुश्किलें तो ओवर कम करनी थी क्योंकि टारगेट सेट था। उनको ये भी ट्रेनिंग देनी थी कि वो एडिशनल वेट 2-3 kg ले के स्विमिंग कर सके। उसके लिए उनको ईंटें देते थे कि ये 2-3 ईंटें ले के वो लोग स्विम करते थे। तो उनका ट्रेनिंग कम्प्लीट स्विमिंग और पानी में उनके करीब 6-7 घंटे पानी के अंदर रहते थे।
इन लोगों को 3 हफ्ते तक पोतों को नुकसान पहुंचाने का गहन प्रशिक्षण दिया गया और लिम्पेट माइंस का इस्तेमाल करना सिखाया गया और ये भी कि किस समय हमला बोलना है। 150 से अधिक कमांडोज को पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के अंदर पहुंचाया गया और नेवल इंटेलिजेंस के चीफ और कमांडर सावंत ने तय किया कि पाकिस्तान के 4 बंदरगाहों पर खड़े पोतों पर एक साथ हमला किया जाए।
जो सारे कमांडर्स थे उनके हाथ में एक एक रेडियो सेट दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे आप ऑल इंडिया रेडियो सुनते रहेंगे। 4 पोर्ट्स हैं, चित्तगांव, नारायणगंज, छालना मोंगला और चांदपुर। इन 4 जगहों में वो सेफ हाउसेज में जाके छुप जाते हैं और सिग्नल का वेट करते हैं और 14 अगस्त के करीब वो सिग्नल आ जाती है रेडियो पे। 2 गाने बजते हैं एक के बाद एक, तभी उनको ऑर्डर मिल जाता है कि भाई ये हमारे सिग्नल आ गए। पहले आरती मुखर्जी का गाना आता है,
हमारे पुतुल आज के प्रथम जबे शुशुर बाड़ी पलकी चेपे बड़ेर साथे आनंद जे।
14 अगस्त 1971 की सुबह 6 बजे आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र से एक गाना और सुनवाया गया।
आमी तुम्हारे जत सुनिएम गी तुम्हारे जत सुनिएम
गे भी एक तरह का कोड था। इसका मतलब ये था कि इन छापामारों को उसी रात चटगांव सहित 4 बंदरगाहों पर हमला करना था।
सबसे बड़ा अटैक जो हुआ था चित्तगांव में था और उस चित्तगांव, जैसा आप जानते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट है ईस्ट पाकिस्तान में। चित्तगांव में सारे कमांडोज आके बस जाते हैं शहर के अंदर। अटैक कैरी आउट करने के लिए उनको शहर से बाहर जाना पड़ता है। अपस्ट्रीम से वो तैर के नीचे आएंगे पोर्ट में, अपने एक्सप्लोजिव फिट करके फिर बाहर निकल जाएंगे। उनको ये प्रॉब्लम था कि ये सारे जो बॉम्ब है, ये जो लिम्पेट माइन है, वो कैसे स्मगल किया जाए। तभी उनको आइडिया आता है कि उनके जो वहाँ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो वापड़ा के जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के जो ट्रक्स हैं वो ले आते हैं और उसमें वो सारा सामान रखते हैं और वो बाजार से बहुत सारे फल और वेजिटेबल्स खरीद के उसमें छिपा देते हैं, इन बास्केट्स में उस माइंस को छुपा के वो शहर के बाहर ले जाते हैं और वहाँ से कमांडोज फिर लॉन्च होते हैं पानी में 15 अगस्त की रात को।
14 अगस्त की आधी रात को चटगांव में मुक्ति वाहिनी के सैनिक शाह आलम ने सबसे पहले पानी में छलांग लगाई। इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे थे फ्रांस में PNS मैंग्रो छोड़कर भाग कर आए अब्दुल वाहिद चौधरी।
ये सारी जो ऑपरेशन है पहले वो प्लान करके देखते हैं कि किस रात को चांद नहीं होना चाहिए, टाइड्स बिल्कुल हमारे फेवर में होने चाहिए, ये सब देख के वो लॉन्च करते हैं रात के 1 बजे के बाद। और सारे कमांडो एक के बाद एक पानी में घुसते हैं, अपने लुंगी डिस्कार्ड करते हैं, स्विमिंग ट्रंक्स पहनते हैं और फिर फिन्स पहनते हैं, वो नाइव्स हैं उनके साथ, हर किसी के पेट पे जो है लिम्पेट माइन बांधते हैं गमछा लेके। शाह आलम जो है एक बहुत ही ब्राइट मेडिकल स्टूडेंट थे, वो लीड करते हैं इस ऑपरेशन को, और चौधरी साहब जो है ये सारा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज है चितगांव में, और वो चितगांव के नेटिव भी थे तो काफ़ी सारा वो जानते थे एरिया को। ये आप सोच लीजिए कि किस तरह से उन्होंने 4 पोर्ट्स पे एक ही तरह एक ही रात को कोऑर्डिनेट करके सारे कमांडोज पहुंच जाते हैं, शिप्स पे अपना ये लिम्पेट माइन जो टाइम बॉम्ब है फिट करके वहां से तैर के बाहर निकलते हैं, भाग जाते हैं, और रातों रात एक साथ 20-30-40 एक्सप्लोजन्स, एक कहर जैसा माहौल हो जाता है रात को, और पाकिस्तान आर्मी जो है उनको पता नहीं लगता है कि किस पैमाने पे ये क्या हो रहा है।
इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी नौसेना के 44,500 टन वजन के पोत डुबोए गए और 14,000 टन वजन के पोतों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी सेना ने इसका बौखला कर जवाब दिया। इन इलाकों से सटे पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए गए और वहां पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा हिस्सा नौसैनिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए डाइवर्ट कर दिया गया।
सातुटी बंगाली एबर कुर्सी मरण पान स्वाधीनता सिनाया बजनमेर मतन बसे थाकबो ना मुक्ति युद्धेर संग्राम सारबो ना जीवन दिछि रक्त दिछि दिबो जीवन आरो तबु बोलबो।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और एक बार फिर रुख अमेरिका के न्यूयॉर्क का, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण पर भारत के जवाब का इंतजार है। न्यूयॉर्क से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं सलीम रिजवी। जी सलीम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इमरान खान ने जिस तरह से कश्मीर का मुद्दा उठाया, भारत पर कई आरोप लगाए, भारत की ओर से क्या अभी कोई प्रतिक्रिया आई है, क्या जानकारी आपके पास है?
अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जो राइट टू रिप्लाई एक वहां पर जो यूएन के रूल्स के तहत होता है कि अगर किसी देश पर सीधे किसी तरह की बात या इल्जाम या आरोप लगाया गया है, कोई बात कही गई, तो उसका आप जवाब दे सकते हैं और वहां पर उसी मंच पे, तो भारत इसका जवाब देगा। लेकिन अभी वेट किया जा रहा है कि वो समय, चूंकि यहाँ स्पीकर जब जो ड्यू है पहले से स्पीकर शेड्यूल्ड है वो बोल लेंगे तब फिर बारी आती है। और उसमें जाहिर है कि भारत अपना रुख रखेगा कि जो आरोप लगाए गए हैं कश्मीर के मामले में, जो उन्होंने कहा है कि भाई ये सारी चीजें हो रही हैं और इस तरह से वहां पे कत्लेआम हो जाएगा और वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजों का भारत एक जवाब देगा। और भारत ये कहता रहा है कि अंदरूनी मामला है और ये किसी भी मंच पे और किसी भी देश को इस पे बोलने का हक नहीं है।
जी सलीम, एक और खबर अमरीका के ह्यूस्टन से आ रही है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक सिख पुलिस अधिकारी पर हमले की खबर है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास है?
जी ये अभी अभी मैंने देखा है, ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये ह्यूस्टन में एक जो सिख, जैसा आपने बताया, तो वो शायद पहले पुलिस अधिकारी थे वहां पे और उनको गोली मारी गई। किस हालात में गोली मारी गई है, क्या वजह है, अभी ये सब चीज पता नहीं चल पाई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले का वाकया है, तो अभी देखना पड़ेगा।
इसके बारे में आपके पास ज्यादा अपडेट नहीं है, हम इंतजार करेंगे और ज्यादा अपडेट का। बहुत शुक्रिया सलीम रिजवी पूरे अपडेट के लिए। और अब चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में करीब 1.5 लाख छात्र छात्राओं ने स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग से प्रेरित होकर जलवायु के मुद्दे पर एक बड़ी रैली निकाली। अमेरिका के निचले सदन ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को आदेश दिया है कि वे ट्रंप प्रशासन के यूक्रेन की सरकार के साथ व्यवहार और संपर्क से जुड़े सारे दस्तावेज जमा करें। रूस में अब कोई भी अपने अपार्टमेंट की बालकनी में धूम्रपान नहीं कर सकेगा। इस नए नियम के तहत खुले स्थान पर मोमबत्ती जलाना तक भी प्रतिबंधित है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापार संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय मंदी का कारण बन सकता है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी रविशंकर कुमार के हाथ। दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।